ओम शांति। आप सभी इस भट्टी का आनंद ले रहे हैं। बचपन में कभी सुनते थे कि समय बड़ा बलवान है। आज सुबह बाबा के महावाक्य सुने और बाबा ने यही इशारा दिया कि हम किसके लिए रुके हुए हैं, जबकि अंत तो ड्रामा का अंत तो होना ही है, इस चक्र का अंत तो होना ही है। तो आज का विषय भी यही है, संगम का समय सर्वश्रेष्ठ खजाना, जिसको स्पष्ट करेंगे हमारे वरिष्ठ भ्राताओं में से एक आदरणीय भ्राता मोहन सिंगल जी। हम इस भट्टी के बीच उनका एक हाथ की ताली बजाकर हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। भ्राता मोहन भाई के बारे में क्या कहूं, क्योंकि आप अपने युवा काल से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आए और तब से लेकर आज तक आपकी सेवाओं के प्रति रुचि तो है ही, लेकिन योगदान भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। लौकिक में आपने एमटेक किया इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद से, और उसके पश्चात ONGC जो वन ऑफ दी प्रेस्टीजियस गवर्नमेंट बॉडी है, उसमें आपने लगभग 28 साल तक अपनी सेवाएं दी और अलग अलग एरियाज में सेवाएं दी, लेकिन शुरू से ही रुचि बहुत रही आध्यात्मिकता के प्रति, और उसी रुचि ने उनको प्रेरित किया और उन्होंने अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं में पूर्ण रीति से समर्पित कर दिया 1966 में। तब से लेकर जो हमारी सेवाओं की वृद्धि हुई, उसमें हमारी बहुत सारी एग्जीबिशंस बनना, उनके बुक्स बनना, अनेक प्रकार के कार्यक्रम होना, कॉर्पोरेट बॉडी में जो हमारे प्रोग्राम्स चलते हैं उन प्रोग्राम्स के लिए, उसके बाद हमारे विंग्स बने, आप साइंटिस्ट इंजीनियर्स विंग में आपने शुरू से ही लेकर बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और ज्ञान सरोवर बना उसके आप प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के रूप में रहे और अभी भी अपनी सेवाएं दे ही रहे हैं। तो ऐसे भाई के लिए और ज्यादा न कहकर हाँ एक बात और कहूंगी, आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए आपको कई बार अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है, जिसमें एक पर्यावरण श्री अवार्ड है और साथ साथ ही एक बार इंटरनेशनल अवार्ड से भी आपको सम्मानित किया गया। तो ज्यादा न कहते हुए मैं मोहन भाई से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि आज के विषय को आप स्पष्ट करें, संगम का समय अनमोल खजाना, सर्वश्रेष्ठ खजाना।
धन्यवाद बहन जी, ओम शांति। बहन जी ने परिचय तो दिया, लेकिन सबसे बड़ा अवार्ड उसका परिचय नहीं दिया। कौन सा अवार्ड? इस जन्म में मुझे साकार ब्रह्मा बाबा और मामा, मैं तो समझता हूँ मेरा सबसे बड़ा अवार्ड यही है कि मुझे बाबा मामा के साथ रहने का, विशेष करके ब्रह्मा बाबा के साथ रहने का तो बहुत बहुत समय प्राप्त हुआ, अनुभव हुआ, और उसे तो मैं अपने जीवन का सबसे ज्यादा अनमोल अवार्ड ही नहीं बल्कि जीवन का एक अनमोल क्षण मानता हूँ, जब से मैं ब्रह्मा बाबा के संबंध संपर्क में आया। और साथ ही साथ जैसा आज बहन जी बता रहे थे कि जो खजाने की बात है, संगम युग का समय है, ये सर्वश्रेष्ठ खजाना है। वैसे तो बाबा ने हम बच्चों को अनेक खजाने दिए हैं, आप सबको मालूम ही है कौन कौन से खजाने दिए हैं, ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, समय का, संकल्पों का, खुशी का, बहुत बहुत खजाने दिए हैं। लेकिन आज का विषय जिस बात पर स्ट्रेस करता है वो है समय रूपी खजाना, संगम युग का समय रूपी खजाना। वैसे तो समय के लिए दुनिया में भी बोलते हैं कि समय बहुत बहुत वैल्यूबल है, एक बार बीता हुआ समय वापस नहीं आता, समय परिवर्तनशील है। दुनिया की सब चीजों को भले इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन समय को हम इकट्ठा कर सकते हैं? नहीं, समय को हमें खर्चना ही पड़ता है। किस स्पीड से खर्चते हैं हम समय? समय को किस स्पीड से खर्चना है? और सब दुनिया वाले एक ही स्पीड से समय को खर्चते हैं, वो है चाहे 60 मिनट प्रति घंटा। एक घंटे में 60 मिनट हमें खर्चने ही हैं, या कहें 60 सेकंड प्रति मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड ये स्पेंड करना ही है। इसलिए समय को हम इकट्ठा तो कर नहीं सकते, हाँ उसको इस रीति से खर्च सकते हैं कि उसका सदुपयोग सदा होता रहे, और जितना उसका ठीक तरीके से सदुपयोग होता है उतना उतना हमें महसूस होता है। क्या महसूस होता है? कभी तो हमें महसूस होता है कि क्या करें भाई, समय कटता ही नहीं है, बहुत स्लो स्पीड से चलता है। जब हमारा मन जो है ना उस समय के अनुरूप नहीं होता, कहते हैं क्या करें समय कटता ही नहीं है। और कभी हम कहते हैं भाई समय तो टाइम फ्लाइज, पता नहीं समय कहाँ चला गया, समय उड़ गया। जब हम बहुत, ये सब हमारी मानसिक स्थिति पर निर्भर है। जब हमारी मानसिक स्थिति बहुत खुशमय होती है, आनंदमय होती है, और पता नहीं समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता, और कभी दुखमय होती है, अशांत होती है, बहुत समय तक हाँ महसूस करते हैं समय बीत ही नहीं रहा है, बार बार घड़ी देखते हैं, अरे अभी इतना ही बजा है, अभी इतना ही हुआ है, ये तो बहुत कम समय बीता। तो समय के लिए अलग अलग बातें कही हैं। खैर दुनिया वालों ने तो बहुत करा है और उसके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय भी बनाया है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम को कैसे मैनेज किया जाए, कम से कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा प्राप्ति कर सके। लेकिन जहाँ तक संगम के समय की बात है, जो बाबा ने हमें बताया है, ये एक बहुत बहुत बड़ा खजाना है संगम का समय। इसको हमें यथार्थ रीति से गुजारना है। और किसी ने ठीक ही कहा है, संगम का जो ये समय है ना, ये तीन शब्द स म य, तो इसका भी अपने अर्थ में स्थित होके अगर हम गुजारेंगे तो समय हमेशा सफलता पूर्वक गुजरेगा। क्या है? स से जो है समय, स म य, एक तो सत्यता के आधार पर परमात्मा शिव, सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है, सार्थक, तो उस आधार पर हमें गुजरना है। यानी कि समानता जीवन में लक्ष्य हो, हमें इस समान बनना है, और वो अगर रोल मॉडल हमारे सामने होता है तो समय उसके समान बनने में गुजर जाता है। हम सब का लक्ष्य यही है, बाबा मामा या देवी देवताओं जैसा बनना है, फरिश्ते जैसा बनके इस तरीके से समानता। माँ से कहा है महानता, जो भी हमारे लक्ष्य हो जीवन में साधारण न हो, जो दुनिया वालों के होते हैं कि बस जीवन मिला है, गुजारना है, खाना पीना और जीवन पास करना, नहीं, महानता का लक्ष्य हो। लेकिन महानता के साथ साथ यथार्थता भी हो, ऐसा भी महान ना हो जो लक्ष्य तक पहुंचा ना जा सके, यथार्थ लक्ष्य को रख के। तो समानता, महानता और यथार्थता, इन तीन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने संगम युग के समय को ऐसा मॉडल करना है, करते जाना है। मॉडल तो कर ही रहे हैं, हम सभी संगम युग में चल ही रहे हैं, तो इसीलिए समय को हम अब देखते हैं बाबा ने हमें किस तरीके से समय का सदुपयोग बताया है, इस खजाने को हम कैसे यूज करें। पहली बात तो समय परिवर्तनशील है, परिवर्तन होता ही रहता है। जब से जन्म लेते हैं हम, पहले बाल्यावस्था होती है, फिर युवावस्था होती है, अधेड़ अवस्था होती है, आदि आदि, समय के साथ साथ हम बढ़ते चलते हैं। लेकिन संगम युग में भी हमारी यही अवस्थाएं हैं, लेकिन थोड़ा अलग रीति से। संगम की बाल्यावस्था क्या है? हम भले ज्ञान में कभी भी आए, चाहे 40 साल की उम्र हो, 50 साल की हो, 20 साल की हो, लेकिन वो सभी की शुरू शुरू में जब से ज्ञान में आए हैं तो वो हमारी बाल्यावस्था होती है। बच्चे को क्या है, बच्चा छोटा होता है, खेलना कूदना खाना पीना, बस यही लक्ष्य होता है। तो कई बार बाल्यावस्था में, संगम की बाल्यावस्था में हमें ये देखना है, बच्चे और क्या करते हैं, थोड़ी बहुत बात हुई, आपस में लड़ाई झगड़ा किया, ये मेरा है खिलौना, वो तुम्हारा है, आदि आदि। तो हम इन बातों में ही हमारी बाल्यावस्था गुजर जाती है कई वर्ष। ये हमारा सेंटर है, वो तुम्हारा है, आदि आदि, बृहद अवस्था नहीं रहती है। तो संगम का समय में बाबा कहता है अभी किसी की कोई भी अवस्था नहीं है, बाल्यावस्था भी नहीं, युवावस्था भी नहीं। कौन सी अवस्था? वानप्रस्थ अवस्था। तो पहले तो हम यही समझें कि बाबा ने हमें वानप्रस्थ अवस्था में रखा है। वानप्रस्थ अवस्था में क्या होता है? जब व्यक्ति की वानप्रस्थ अवस्था होती है तो उसका ध्यान अपने प्रति कम देखते हैं, बाल बच्चे होते हैं, पोते पोतियां होते हैं, उनकी पालना, उनकी खुशी में ही वो लगा रहता है। तो अभी जो बाबा के अनेक बच्चों का जन्म हो रहा है, ज्ञान में चल रहे हैं, तो हमें उनके सामने अपने को रोल मॉडल बनाना है। वो हमारे सम्मुख आए भी तो हमसे कुछ प्राप्त करने की इच्छा रखे, प्रेम शांति। बाबा ने जो अनेक गुण शक्ति आत्मा की बताए हैं, सुख शांति आनंद पवित्रता प्रेम ज्ञान शक्ति, ये जितनी भी चीजें हैं, बस एक तो वानप्रस्थ वाणी से परे। बाबा ने बोला है कर्मातीत अवस्था की निशानी एक ये भी है, या कि जितना जितना हम कर्मातीत अवस्था की तरफ बढ़ते जाएंगे उतना उतना हमें वाणी में आना अच्छा नहीं लगेगा, वाणी से परे होते जाएंगे, एकांत प्रिय होते जाएंगे। बस यही बात है जो बाबा हम बच्चों से एक तो चाहता है, और अब हम बच्चों को बस वाणी से बिल्कुल न्यारे जैसे होते जाना है। बाबा कहता है जहाँ 10 अक्षर का काम हो, 10 बोलने का सेंटेंस, वहाँ एक सेंटेंस से ही बात पूरी हो जाए। साकार बाबा को हमने देखा, हमारे सामने रोल मॉडल है साकार बाबा। बाबा को जब हम पहले मिलते थे 62-63 वगैरह में, तो बाबा बहुत समय देते थे, हाँ बच्चे क्या है, खिलाने ले जाते थे, घुमाने ले जाते थे, हम लोगों के साथ बैडमिंटन कभी खेल रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जब समय गुजरता गया, 63-64, जब 65-66 के करीब हमने देखा, तो बाबा बहुत कम हम कुछ बात बोला करते थे कि बाबा को सेवा का समाचार सुनाते थे, या बाबा के पास जा करके बाबा से पुरुषार्थ की कोई बात पूछा करते थे। बस एक दो लाइन ही बोलते थे, बाबा कहता था बाबा बच्चे बाबा समझ गया, और बाबा तुरंत उसका उत्तर दे देता था। लेकिन और जब समय गुजरता गया, 66-67 के बाद 68 और 69 आया, 69 और 68 में हमने देखा कि बाबा बहुत धीरे धीरे सब समेटते जा रहे थे। जो वृद्धावस्था के नजदीक होता है ना, वो धीरे 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 उसका प्रयास रहता है कि मैं समेटता जाऊं, क्योंकि आध्यात्मिकता की तरफ कुछ रुचि बढ़ जाती है। और सुना है अंत मते सो गति, तो अंत में सब तरफ से धीरे धीरे समेटता जाता है, क्योंकि कहा यही जाता है कि अंत में जब मनुष्य शरीर छोड़ता है, तो फिर उसके सामने जीवन भर की रील घूम जाती है। जीवन में जो जो अच्छे कर्म किए हैं, खराब कर्म किए हैं, वो सब घूमने लगते हैं, उसे याद आने लगते हैं, और उसके आधार पर ही फिर क्या होता है, अंत समय में जिस चीज की स्मृति होगी, और उस स्मृति के साथ शरीर छूट गया, उसका आत्मा चली गई, तो फिर तो अंतमति सोगति हो जाएगी, या तो सदगति होगी अगर ईश्वर की याद का उसे अभ्यास होगा, सब तरफ से नष्टो मोहा स्मृति लब्धा जो गीता में कहा है वो करा हुआ होगा, या फिर दुर्गति हो जाएगी अगर पत्नी बच्चे पति धन दौलत संबंधी याद आए, कोई भी वस्तु व्यक्ति वैभव कुछ भी याद आया, तो बस ये समझो कि दुर्गति। बाबा ने भी कहा है फिर वहाँ ही जन्म लेना पड़ेगा, वो सदगति तो हुई नहीं, तो जन्म तो लेना पड़ेगा अगर हमारी सदगति नहीं हुई। इसीलिए बाबा संगम के समय को केवल खजाना ही नहीं, खजाने बहुत बोले हैं, लेकिन सबसे बड़ा खजाना इसीलिए कहा है कि इस संगम के समय में ही हम लोग जो अपना जीवन गुजार रहे हैं, अंत उस सेकंड के लिए जब हमारे प्राण शरीर से छूटेंगे, अंतमति सुगति के लिए। इसीलिए हमें कौन सी स्थिति बनानी चाहिए, बाबा ने बताया ये सबसे बड़ा खजाना है, तो परिस्थितियां तो आएंगी। गीता में भी कहा है मान अपमान निंदा स्तुति हार जीत दुख सुख हानि लाभ जय पराजय, विपरीत परिस्थितियां बहुत आएंगी, रोज आएंगी, क्योंकि हम घर गृहस्थ समाज में रहते हैं, और इस कारण से परिस्थितियां तो विपरीत होंगी, लेकिन उन परिस्थितियों में रहते हुए भी अवस्था हमारी एक रस हो, इस तरीके से हो कि विजय में भी वही स्थिति हो, पराजय में भी वही स्थिति, कोई स्तुति करे तो भी ये नहीं कि एकदम खुशी में चढ़ जाए, और कोई निंदा करे तो भी ऐसा न हो कि बिल्कुल ही मूड ऑफ हो जाए, बिल्कुल ही जैसे नीचे गिर जाए। इसीलिए बाबा ने कहा है, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। उसे मित्र समझ करके ही व्यवहार करना चाहिए, नहीं तो जो निंदा करता है अक्सर करके उसके प्रति घृणा, ईर्ष्या और दुश्मनी की भावना, ऐसी ऐसी बात आ जाती है। तो इसीलिए ये खजाना तब बन सकेगा, सर्वश्रेष्ठ खजाना, जब हमारी ऐसी एक रस स्थिति होगी, और वो हमने ब्रह्मा बाबा को भी देखा। एक रस स्थिति बनाना भी सहज नहीं है, लेकिन परिस्थितियां आए, लेकिन हमारी स्वस्थिति इतनी ऊंची हो जो उस परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर ले। हमें ये भी सौभाग्य बाबा के साथ, जैसा मैं बता रहा था, तो बाबा की उम्र भी काफी 93 साल थी, और माउंट आबू में सर्दी का मौसम होता था बहुत, कई बार बाबा को खांसी आती थी। तो बाबा के बगल में आपने हिस्ट्री हॉल भी देखा होगा पुराना, तो जो बाबा वहीं क्लास कराते थे, तीन संदली रहती थी, एक इधर, एक बीच में, एक इस साइड में। एक संदली पर बाबा आके बैठते थे, बीच की संदली खाली रहती थी, और एक संदली पर मामा बैठा करते थे। बाबा के आने से पहले मामा भी कुछ थोड़ी सी मुरली चलाते थे, महावाक्य, फिर बाबा आते थे, तो बाबा मुरली जब चलाते थे तो सब बिल्कुल ऐसे पिन ड्रॉप साइलेंस में बैठ के गौर से मुरली सुनते थे। कई बार बाबा को, जैसे बताया मैंने, ठंडी की मौसम भी होती थी, खांसी भी आती थी, और लगता था जैसे बाबा की आंख से जैसे गीली हो जाती थी पानी, इतनी खांसी भी कभी कभी आती थी। बहुत तकलीफ हो रही है, ऐसा हम लोगों को, देखने वालों को महसूस होता था। लेकिन बाबा क्या करते थे, अपनी स्वस्थिति से खांसी रूपी परिस्थिति को ऐसा बदल लेते थे कि बस जैसे है ही नहीं। खांसी आई, तकलीफ हो रही है, बाबा कहते थे, उसमें ही बोलते, देखो बच्चे, आज ये पुराना तन है, पुराने तत्व है, पुरानी दुनिया है, शरीर भी पुराना, आत्मा भी पुरानी हो गई, कल बाबा जाके ऐसा मिश्नु कृष्ण बनेगा। कृष्ण का वहाँ पर ट्रांसलाइट का चित्र रखा रहता था, लक्ष्मी नारायण का रहता था, कल बाबा जाके ऐसा बनेगा, और सतयुग में तो वहाँ पर तो कोई भी खांसी नहीं होगी, व्याधि नहीं होगी, रोग शोक कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तत्व भी सतो प्रधान होंगे, हमारा शरीर भी सतो प्रधान होगा, और आत्मा भी सतो गुणी होगी, और इसीलिए किसी भी प्रकार की कोई व्याधि कुछ नहीं होगी। तो बाबा ये कहते कहते स्वस्थिति, कल जाके मैं ये बनूंगा, कृष्ण बनूंगा, बच्चों को भी बहुत खुशी होनी चाहिए, खुशी में खग्गिया मारनी चाहिए, ऐसे बाबा खुशी में खग्गिया मार के भी ना कभी बताता था, जिससे कि भी बच्चों की भी ऐसी स्थिति बन जाए कि कभी कोई परिस्थिति आए तो उसके विपरीत अपनी स्वस्थिति को इतना ऊंचा बना ले। बस बाबा ये स्वस्थिति का वर्णन करते करते परिस्थिति जैसे गायब हो जाती थी, भूल जाती थी, और फिर बाबा उसी वेग में मुरली चलाना शुरू कर देते थे। तो एक तो हमें ये खजाना, अगर वास्तव में हम चाहते हैं संगम योगी खजाना, तो हमें परिस्थितियां आएंगी, लेकिन हमें अपनी स्वस्थिति को इतना पावरफुल बनाना है कि स्वस्थिति इतनी मजबूत हो जाए कि कोई भी परिस्थिति उस पर वार ना कर सके। परिस्थिति हार जाए, स्वस्थिति विजय प्राप्त कर ले, और इवन ये लास्ट तक भी ऐसा ही रहा। तो एक तो ऐसी स्थिति, मुझे अंतिम दिन एक मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है, क्या बाबा से मिले तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ बाबा ने जब शरीर छोड़ा 18 जनवरी को, तो उस समय हम मधुबन में आ गए थे, आसाम में पोस्टेड थे बहुत दूर इंजीनियरिंग करने के बाद, ONGC नाम की संस्था उसमें आसाम में पोस्टिंग थे, और अंतिम समय में बाबा ने जैसे अपने पास बुला लिया, तो 17 जनवरी की सुबह हम और हमारे लौकिक पिताजी हम लोग बाबा के पास मधुबन आ गए, और 2 दिन तक बाबा की पूर्ण रीति से कर्मातीत अवस्था देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो कर्मातीत अवस्था को तो हम लोगों को भी प्राप्त करना ही है, पर नाम से आत्मा जिस स्वरूप में आई थी उसी स्वरूप में जाना है। तो इस बात का वर्णन से पहले मैं एक बात ममा की बता देना चाहता हूँ जो इससे संबंधित है। ममा ने जब 1965 में शरीर छोड़ा तो ममा तबीयत खराब थी और बीमारी थी, शरीर छोड़ा तो ममा छोड़ करके शरीर जब सूक्ष्म वतन में आत्मा गई तो वहाँ पर बाबा बैठे हुए थे, बाबा दिखाई दिए सूक्ष्म वतन में, अव्यक्त संपूर्ण ब्रह्मा की मूर्ति है ये है, जैसे वो वहाँ देखते ही हैं जो भी संदेशियां जाते हैं। तो वहाँ पर जब गए तो दादा ने पूछा, शिव बाबा ने सूक्ष्म वतन वासी संपूर्ण ब्रह्मा के द्वारा पूछा, ममा आपने कर्मातीत अवस्था का अनुभव किया? तो ममा चुप रही, ममा ने कुछ नहीं कहा, देखते रहे बाबा को। फिर बाबा ने पूछा तो ममा ने कहा, नहीं बाबा कर्मातीत अवस्था का तो मैं अनुभव नहीं कर सकी, नहीं करके आई। तो बाबा ने कहा कि बच्ची कर्मातीत अवस्था का अनुभव किए बिना तो और उसे प्राप्त किए बिना तो कोई परम धाम जा नहीं सकता है जहाँ से आत्मा आई है। तो जाओ तुम अभी नीचे जाओ, तुम्हारा शरीर हिस्ट्री हॉल में रखा है और सब बच्चे योग में बैठे भी हुए हैं, आह्वान कर रहे हैं, तो जाओ उस शरीर में प्रवेश करके थोड़ा समय के लिए कर्मातीत अवस्था का अनुभव करके आओ। तो बाबा ने ममा को नीचे भेजा, ममा आए हिस्ट्री हॉल में और होंगे क्योंकि आत्मा तो कोई इन नैनों से तो दिखाई नहीं पड़ सकती है, शरीर के द्वारा कोई एक्शन करे तभी पता चलता है। उसके बाद थोड़े समय के बाद मामा जब लौट के गए ऊपर तो बाबा ने पूछा, बच्ची अनुभव किया कर्मातीत अवस्था का? तो मामा ने कहा, नहीं बाबा नहीं किया। क्यों बच्ची? बाबा ने तो भेजा उसी के लिए था कि बाबा जब मैं वहाँ गई तो शरीर तो बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था और मैंने आत्मा उसमें गई जाने का प्रयास किया लेकिन शरीर में कोई भी हलचल नहीं हुई, चुरपुर नहीं हुई, क्योंकि शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया था और जब मैं कोई अनुभव ही नहीं कर सकी तो फिर मैं आके यहाँ पर आपके सामने आ गया। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, कर्मातीत अवस्था का अनुभव किए बिना कोई भी आत्मा वापस परम धाम नहीं जा सकती, और अभी भले तुम शरीर छोड़ दिया है लेकिन अभी परम धाम का गेट नहीं खुला और वहां नहीं जा सकती, अभी तुम्हें पुनः पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, और जाओ पुनर्जन्म लेके जो भी काम अधूरे रहे हुए हैं वो सब पूर्ण करके आओ, और फिर जब जाओगी परमधाम कर्मातीत अवस्था का अनुभव करते हुए उसके बाद फिर सब जाएंगे। तो देखो ये बाबा ने केवल मम्मा को नहीं कहा, हम सबको के लिए ये एक सूचना है कि ये संगम युग का ये खजाना सबसे उत्तम खजाना तभी बनेगा हमारे लिए जब इस खजाने को हम यथार्थ रीति यूज करके कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करें। और जब कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे, कर्मातीत अवस्था का मतलब हमारी सबकी कर्मातीत अवस्था अलग अलग है, अपनी अपनी है। जो भी अवस्था हमारी सर्वोत्तम तक पहुंच सकने है उसको पहुंचे, वो हमारी जैसे कर्मातीत अवस्था। तो इसीलिए ये अवस्था यहाँ पुरुषार्थ करते करते हम सबको पहले परमधाम जाना है। और परमधाम हम तभी जाएंगे जिस स्थिति में हम परमधाम से आए थे, पवित्र थे, आत्मा संपूर्ण रीति से पवित्र। तो पवित्र जब बन जाएंगे तब परमधाम में वहाँ जाएंगे, और उसके बाद फिर आके सतयुग में अपने अपने समय पर आएंगे और अपने अपने समय पर पार्ट हो जाएंगे। तो ये हमारा लक्ष्य अंतिम होना चाहिए कि मुझे संपूर्ण रीति से पवित्र बन के परम धाम जाना है। कभी भी ऐसा लक्ष्य न हो यहाँ कंटाल जाए, दुखी हो जाए, अशांत हो जाए, कहीं संबंधों में कटुता है, कहीं किसी के साथ और व्यवहार में हमारी बोला चाली ठीक नहीं है, कई प्रकार से असंतुष्टता अगर जीवन में रही तो क्या रहेगा कि हम जो है उस अवस्था में तो परम धाम जा नहीं सकते, क्योंकि संपूर्ण पवित्र बन के जाना पड़ेगा, तो हमें पुनः पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए बाबा कहता है अंतिम समय तक ऐसी याद हो जो बाबा के सिवाय और कोई भी याद ना आए, किसी कोई व्यक्ति नहीं, वस्तु नहीं, वैभव नहीं, किसी भी प्रकार का। इसीलिए भक्ति मार्ग में भी बोलते हैं, कई बार कहते हैं कोई आदमी या बहन कोई बीमार पड़े है, शरीर छोड़ने की तैयारी है लेकिन फिर भी आत्मा निकलती नहीं, शरीर छूटता नहीं, क्यों? वो लोग तो कहते हैं भाई इसके प्राण किसी में अटके हुए हैं, वो आएगा, उसको देखेंगे, कोई बात करेंगे और फिर आत्मा शरीर छोड़ देगी। और कई बार ऐसा होता भी है, देख रहा है। तो हमें ये देखना है कि हमें अंत समय में कोई भी याद न रहे, और वो तब होगा, तब होगा जब हम अभी से ही समेटते जाएंगे, कोई भी काम पेंडिंग नहीं होगा, बचा हुआ नहीं होगा। होता क्या है, हमें याद है, मालूम है, यहाँ पर कई बार पूरे भारतवर्ष से भाई बहने आते हैं अपने किसी प्रिय का भोग लगाने के लिए, उसने शरीर छोड़ा हुआ होता है और जब उसको भोग लगाते हैं तो कई बार वो आत्मा जैसे बहुत विलाप भी करती है, दुख मनाती है, अरे मैं सोचती रह गई या सोचता रह गया, मुझे ये काम करना था, बाबा का सेंटर बनाना था, इतना धन का ये सदुपयोग करना था, लेकिन मैं कल कर लूंगा, कल अच्छा बाद में कर लूंगा, और ये कहते कहते शरीर छूट गया, अब तो वो सब रह गया। तो बाबा से भी कई बार पूछते, बाबा मैं बच्चे को बोलाया, बिल में लिखाया कि मेरा ये तुम धन यज्ञ में दे देना और ये यज्ञ के नाम से है। तो बाबा जीते जी तो मैं कर नहीं सका अब। तो बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे अब तो जो करेगा वो पाएगा, अभी वो देगा तो उसका भाग्य बनेगा। जो इसीलिए कोई भी काम हमारा ऐसा न रहे जो रहे पेंडिंग पड़ा रहे, और हमें बाद में ये पश्चाताप करना पड़े, अरे मुझे ये करना चाहिए था, ये मैं कर सकता था, ये मैंने सोचा था करने के लिए लेकिन मैं नहीं कर सका। क्योंकि जब ये स्थिति रहेगी अंत समय में तो क्या होगा, फिर हमारा तो भाग्य बनेगा नहीं, सदा के लिए पश्चाताप की स्थिति होगी। इसीलिए हाँ, रहने भी हो भाइयों के लिए नहीं, बिल वगैरह भाइयों को जो कुछ भी करनी हो सब कुछ अपने हाथ से करके और विल करके और जो हो निसंकल्प हो जाए। हाँ बाबा आई एम रेडी, अचानक और एवर रेडी होना है, अगर जाना भी है तो मैं चला जाऊँ, आप बुला सकते हो। ऐसे ही बहने भी अपना कोई ये नहीं कि सब हाँ मानो कोई घर की चाबी वाबी है बहुओं को देनी है, दे दा के पूरा करो अपना, और उस चीज में घर में अटका न रहे प्राण कि अरे अंत समय ये रह गया। सब समेट करके जैसे हम बाबा को कहे हाँ बाबा आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ, एवर रेडी, और अचानक। और ये कब होगा? जब बहुत काल का अभ्यास होगा, बहुत काल तक हम बाबा के साथ वार्तालाप में कहेंगे हाँ बाबा आई एम रेडी। तो इसीलिए कोई भी काम बचा न रहे। देखो ब्रह्मा बाबा को भी हमने देखा, बाबा समेटते जा रहे थे, पहले बाबा सबके साथ खेलते टहलते थे, फिर और बहुत कम हो गया। और अब हम अंतिम दो दिन की बात सुनाते हैं, 17-18 जनवरी की। बाबा के पास जब हमेशा की तरह जाते थे, बाबा को ये बताएंगे ये पूछेंगे, जब गए तो बस बाबा ने नैनों में देखा और बाबा ने कहा बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा। यानी कि हमें एक अक्षर भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, बाबा ये करें या ना करें या ऐसे करें। बाबा ने मन के भाव एकदम नैनों से पढ़ लिए और उसका उत्तर दे दिया, समाधान दे दिया। और इसी स्थिति को ही कहते हैं मन जीते जगत जीत। बाबा ने अपना मन इतना जीत लिया था, ऐसी स्थिति बना ली थी कि उसके अंदर कोई भी व्यर्थ संकल्प अपना संकल्प नहीं था। इसीलिए जिस आत्मा को भी दृष्टि देते थे उसके मन के भाव को समझ लेते थे और उसका समाधान कर देते थे। इसमें टाइम और एनर्जी भी सब बचती थी। तो एक तो ये देखा, हमारी भी अगर हम चाहते हैं तो ये स्थिति कैसे आएगी? ये स्थिति आएगी इच्छा मात्रम अविद्या से। बस बाबा कहते हैं इच्छाएं जो मन में होती है ना, वो इच्छाएं जो है अच्छा नहीं बनने देती। तो अब मन में कोई भी इच्छा किसी चीज की ऐसी ना हो, बस बाबा आपने आपको पा लिया, सब कुछ पा लिया, बस अब कुछ भी पाना बाकी नहीं रहा। इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति होगी तब हम दूसरे की इच्छाओं के अंत समय में लोग हमारे पास आएंगे चारों तरफ से निराश होके, हाहाकार हो रही होगी एक तरफ ब्रह्मा कुमारियों की जय जयकार होगी। और बाबा कहता है जब ऐसी स्थिति होगी लोग आपके पास आएंगे, समय भी नहीं होगा पूछने का, बस हम आएंगे, हम उन्हें दृष्टि देंगे, दृष्टि से उनके मन का हाल जान लेंगे और उसका समाधान भी कर देंगे। और जब उनके मन का प्रश्न का समाधान भी हो जाएगा, उन्हें अनुभव होगा रे यही तो भगवान है, हर जगह हम देख रहे हैं, बस जहाँ मैं जाता हूँ मेरी इच्छा की पूर्ति हो रही है। और भगवान को सब जगह वहीं से सिद्धांत भक्ति मार्ग का निकल जाएगा, भगवान सर्वव्यापी है, हर एक में, हम और आप सब में, एक एक के अंदर वो अपने इष्ट देव का दर्शन करेंगे, चाहे जिसको भी पाते हम। वो कहानी भी है, एक राजा के पास एक व्यक्ति आया, छोटा सा भिक्षा पात्र था। तो आया, राजन मुझे भिक्षा दे दो। तो राजा ने कहा हाँ हाँ, ये तो तुम्हारा बहुत छोटा सा भिक्षा पात्र है, तुरंत बढ़ जाएगा। मंत्री को कहा, उसने लाके उसमें डाला, सोना चांदी ईदा मोती लाता गया डालता गया, वो भरता ही नहीं था, देखने में छोटा था भरता ही नहीं था बिल्कुल। जब बहुत ऐसी स्थिति हो गई, खजाना भी खाली होने लगा, तब राजा को कुछ चेतना आई कि जरूर इसमें कोई विशेष बात है। वो उसके सम्मुख जाके प्रणाम करके साधु को बोला महाराज जरूर इसमें कुछ विशेष है, तो ये भरता नहीं है मैंने, तो इसलिए वहाँ आके फिर बाबा ने कहा, बाबा को यो जो राजा था वो राजा आया, तो राजा ने जब कहा तब सन्यासी ने बताया कि महाराज ये भिक्षा पात्र खोपड़ी का बना है, मनुष्य की खोपड़ी का मन होता है ना यहाँ, तो इसीलिए मनुष्य की खोपड़ी का उसके अंदर एक इच्छा पूरी होती है तो चार और इच्छाओं का जन्म हो जाता है, और वो पूरी हुई 10 और इच्छाओं का जन्म होता है, तो ये तो कभी भरेगा नहीं। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी सर्व इच्छाओं को पूर्ण संतुष्टता को प्राप्त कर ले तो वो तभी होगा जब ये मन जो है ना, ये मन ये खोपड़ी इसका बना हुआ है, तो मन को हम वश में करें। मन जीते जगत जीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो ये सारा हमारी मनोस्थिति, तो अभी बाबा वर्तमान समय भी जो समय दे रहा है, कहने को भले निमित्त कोविड आया है या कोई ओमिक्रॉन कोई भी आ रही है परिस्थिति, लेकिन हमें बाबा संपूर्ण देखना चाहता है। हमारे आधार पर सारा संसार टिका हुआ है, हम उसके पिलर हैं। बाबा कहता है तुम पूर्वज हो, पूज्य हो। अब ये बिचारे भक्ति मार्ग वाले दुनिया वाले बहुत दुखी हैं, निराश हैं, हताश हैं, ऐसी स्थिति है उनकी। बाबा कहता है उनकी आवाज क्या तुम्हें सुनाई नहीं देती, तुम उनके इष्ट देव हो तो तुम्हें उनकी आवाज सुनाई दे, इसीलिए इस समय तुम्हें दो शक्तियों की विशेष आवश्यकता है, दो बातों की। एक तो रहम दिल, हर एक को देख करके रहम की भावना आनी चाहिए, बाबा इनका भी कल्याण, हर एक के प्रति शुभ भावना शुभ कामना, जो बाबा कहता है रहम दिल की भावना हो। और रहम दिल की भावना जब होगी जितनी जितनी, उसके बाद दातापन की भावना। तो रहम दिल और दातापन, ये संस्कार अब बच्चों का जो हमारे अंदर है दबा हुआ, क्योंकि हम ही पूर्वज और पूज्य पूरे कल्प भर रहे हैं, सतयुग से लेकर, सतयुग में भी हाथ यूं होता है देने की आवश्यकता ही नहीं होती, द्वापर से देते चले आते हैं, और संगम तक भी बाबा हम बच्चों को हमारी मूर्तियां जो मंदिरों में हैं, भक्त लोग आके उससे मांगते हैं, और जब हमारी मूर्तियों से मांगते हैं, मूर्तियों से अपनी इच्छा की पूर्ति का अनुभव करते हैं, तो हम तो चैतन्य में हैं यहाँ पर। तो हमारे संकल्प ऐसे होने चाहिए कि ये खजाना जो बाबा चाहता है संगम के अनेक खजाने में, ये समय को सफल करना है हर रीति से, और समय और मन, समय और संकल्प दोनों का आपस में एक दूसरे से बहुत बहुत गहरा संबंध है। तो इसीलिए अभी हमें ऐसा करते करते चलना है। बाबा को भी हमने देखा, ब्रह्मा बाबा को भी ना, बस यही इच्छा अंत तक, जब ये ऐसी स्थिति बन गई, बाबा अंतिम दिन 18 जनवरी को आए, 18 जनवरी को बाबा ने क्लास कराया, हम भी सम्मुख बैठे हुए थे, लेकिन उस दिन बाबा को एक बार भी खांसी नहीं आई, गला साफ करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि शरीर के कर्म भोगों के ऊपर योग बल ने जैसे संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर ली थी, और इसीलिए एक बार भी कुछ ऐसी तकलीफ नहीं हुई। बाबा ने इतना फ्लॉलेस मुरली चलाई, बाबा मुरली चला रहे थे, एकाएक हमारे मन में भी संकल्प आया बाबा कुछ हमारे लिए भी बोले, क्योंकि इतना दूर से आसाम से आए हुए थे। अब भगवान तो संपूर्ण, ब्रह्मा बाबा तो संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर चुका था, हम लोगों के इष्ट देव भी हैं संगम में भी और पूरे कल्प भर में भी, जब से सतयुग से लेकर के अंत तक भी हम सब साथ ही साथ रहे हैं। तो इस कारण से जैसे ही संकल्प आया, और संकल्प में कुछ सेकंड भी नहीं गुजरे होंगे, तुरंत बाबा तक पहुंचा, इतनी क्लैरिटी बाबा की थी तो जो बाबा कहता है क्लीन और क्लियर बुद्धि हम सबके लिए भी कहता है, और बाबा की इतनी अपनी बुद्धि क्लीन क्लियर हुई, संकल्प किया, बाबा तक पहुंचा, बाबा ने नाम लेके हमारा कुछ महावाक्य उच्चार दिए और वो आज तक भी हमारे लिए पूरा गाइडलाइन बने हुए हैं। तो ये तब होगा, हम भी दूसरों के इष्ट देव तब कहलाएंगे जब उनकी इच्छा मात्र अविद्या, उनकी इच्छाओं की हम पूर्ति कर सकेंगे। और वो कब होगा? ऐसे बाबा से भी बच्चों ने पूछा, बाबा आपकी अंत समय क्या स्थिति थी जब आपने शरीर छोड़ा? तो बाबा ने बताया, बच्ची मैं क्लास करा के और जब आया और बच्चों से कहा कि बच्चे अब बाबा छुट्टी लेता है, अंत समय विदाई लेता है, बाबा से छुट्टी लेके और आया कमरे में, तो चेस्ट में इधर दर्द हो रहा था और वो दर्द धीरे धीरे बहुत बहुत बढ़ता जा रहा था। दादी जी सामने ही थे, बाबा के कमरे तक छोड़ने गए थे, तो बस बच्ची बहुत दर्द हो रहा है यहाँ पर, और बस बाबा अपने धीरे धीरे एकदम स्वस्थ, एक तरफ तो दर्द था शरीर का दर्द कर्म भोग, और दूसरी तरफ जितना योग बल इकट्ठा किया हुआ है वो योग बल की अपनी स्वस्थिति, बाबा उसे पावरफुल बनाते गए। तो धीरे पहले तो परिस्थिति ज्यादा बलशाली थी, दर्द बहुत ज्यादा था, फिर धीरे 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 स्वस्थिति बाबा की मजबूत होती चली गई और परिस्थिति दर्द रूपी परिस्थिति और कम कम होती चली गई और स्वस्थिति इतनी शक्तिशाली हो गई कि बस बाबा ने कहा, अच्छा बाबा अब मैं आपके पास आया कि आया, और बाबा बच्चों से यहाँ से विदाई लेकर के चला गया। तो हमारा भी अंतिम पेपर ये शरीर का पेपर है, तो ये शरीर भी एक तरीके से बहुत बहुत बड़ा खजाना इसलिए है कि पांच तत्वों का बना है, और जब तक इस शरीर से हमारे कर्म भोग हैं तब तक आत्मा जा नहीं सकती, और जब शरीर हमें छुट्टी दे देगा, हाँ इस शरीर के साथ कर्म भोग चुप्त हो गए, तो आत्मा विजयी होकर जैसे चली जाएगी। तो इसीलिए इस शरीर के साथ इन तत्वों को भी हमें प्रतिदिन योगदान करना है। इस रेफरेंस में मैं जानकी दादी की बात एक बता के पूर्ण करता हूँ कि जानकी दादी विदेश से आए हुए थे और 2000 की बात है, पिछला जो 2000 का वर्ष का 31 दिसंबर आखिरी दिन, और 31 दिसंबर को तो बाबा आते ही हैं, तो बाबा यहाँ पर मतलब शांतिवन में आए हुए थे, तो मुरली के बाद निर्वैर भाई और प्रकाशमणि दादी जी बाबा के पास गए और बताया कि बाबा जानकी दादी अहमदाबाद तो आ गए लोटस तक, लेकिन बहुत तबीयत उनकी खराब है और डॉक्टर ने तो बोला है बस अब जिसको भी बुलाना हो बुला लो, और ये तो बहुत ही ज्यादा सीरियस है, कुछ हो नहीं सकता। तो बाबा को ये बात बताई तो बाबा ने सुना और कहा कि नहीं बच्चे, उसे कुछ नहीं होगा, वो प्रकृति जीत आत्मा है, प्रकृति जीत बाबा ने बोला। और आप देखो कि कहां 2000 का साल और कहां 2020-21 तक दादी कितनी सेवा करते रहे, 21 साल और जिए। तो ये तब है जबकि शरीर रूपी पेपर, और हम लोग कई बार पूछते थे दादी आपको बाबा ने प्रकृति जीत बोला है, उससे आप कैसे प्रकृति जीत बने? तो दादी अक्सर करके कहा करते थे कि देखो ये शरीर है ना तत्वों का बना है, तो मैं रोज पांच तत्वों को योगदान करती हूँ, रोज मैं उनसे वार्तालाप करती हूँ। बाबा ने भी कहा था अर्ली 90s में जब मुरली चली थी, इन प्रकृति के तत्वों से वार्तालाप करो, हे जल देवता, आप जल देवता हो, अभी तक भी आपको देवता रूप में मानते हैं, मैं भी होवनहार देवता हूँ, आइए हम दोनों मिल करके हम इस सृष्टि को पवित्र बनाए, तत्वों को पावन बनाए, और मेरे शरीर में भी जैसे जल है आप हो, तो आइए हम दोनों मिलकर अब कलयुग अंत तक तमोगुणी हो गए या अब हम सतो प्रधान बने और इस सृष्टि को भी सतो प्रधान बनाए, और अब हम आपके गुणों को धारण करते हैं। क्योंकि मित्रता उन्हीं में होती है जिनमें आपस में एक जैसे संस्कार होते हैं। तो जल के गुण धारण करेंगे तो जल कभी भी हमारी मृत्यु का कारण नहीं बनेगा। बाबा ने कहा है कि भारत में तो ज्यादातर प्राकृतिक आपदाओं के कारण मृत्यु होनी है, लेकिन ये नहीं होंगी कि ये जो होंगी इनमें आप बच्चों को प्रतिदिन रोज योगदान करना है प्रकृति के तत्वों के प्रति। अभी तो समय नहीं है तो अभी तो मैं नहीं बताता, लेकिन जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश, इनके तत्वों को हम, इनके गुणों को हम जितना धारण करते रहेंगे, मान लीजिए जल का तत्व है तो जल के तत्व का सबसे बड़ा गुण है एडजस्टमेंट पावर। इस जल को गिलास में ले लोगे, गिलास में सेट हो जाएगा, कटोरी में लोगे, कटोरी में सेट हो जाएगा, चम्मच में लोगे, चम्मच में। ऐसे ही मेरी नेचर भी ऐसी हो जाए, हर आत्मा के साथ हम सेट होकर के चल सके तो क्या होगा, यानी कि मैंने जल के गुण धारण कर लिए। और बाबा ने कहा है मैं बच्चों की रक्षा के लिए बंधा हुआ हूँ, मैं ऊपर, जैसे जब भी कोई बात होगी बच्चों का टीवी मेरे पास है, सबके वो ऑन हो जाता है, मुझे पता चल जाता है बच्चा किस परिस्थिति में से गुजर रहा है, मैं ऊपर से दान करता हूँ। और अगर बच्चे की क्लीन और क्लियर बुद्धि हुई वो कैच करेगा और उसे सोचना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली उसके पैर उधर बढ़ेंगे जहाँ सेफ्टी होगी, जहाँ कोई भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पड़ेगा, भले 10 कदम दूर तक अर्थक्वेक होगा, सुनामी होगी कुछ, लेकिन उसके पास तक नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे तो प्रकृति जीत बन गए, उन प्रकृति ने उन उसके ऊपर उससे मित्रता का हाथ मिला रखा है, अरे वो उसकी जान नहीं ले सकते। ऐसे ही सब तत्वों के हैं, तो अभी हमें अगर वास्तव में इस समय को सर्वश्रेष्ठ खजाना बनाना है तो ये ही समय अंतिम समय है जब हम इस संगम युग के समय को खजाना बना सकते हैं। और इसीलिए बाबा ने कहा अब बच्चों में अंत का भी अंत आ गया है, आ रहा है, तो दो शक्तियों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। एक है परखने और निर्णय करने की शक्ति और दूसरा सामना करने की शक्ति। माया भी ऐसे रूप में आएगी, आपको माया का रूप लगेगा ही नहीं, बहुत सुहाना रूप लगेगा, वो माया के रूप में फंस जाएंगे। कितनी प्रकार की परिस्थितियां आएंगी, लेकिन हमारा परखने और निर्णय शक्ति अगर ठीक हुई तो हम उसको परख सकेंगे। और ये आएगी एकाग्रता से। एकाग्रता जब तक हम बच्चों में पूर्ण नहीं है, कमी है एकाग्रता की, तो हम उसको परख नहीं सकते। और परखने के बाद फिर क्या, उसका सामना करने की भी तो शक्ति होनी चाहिए। तो सामना करने की शक्ति आएगी जब बाप के साथ कंबाइंड रूप होगा हमारा, बाबा के साथ जब कंबाइंड रूप में बाबा के साथ होंगे, बाबा का हाथ और साथ सदा हमारे साथ होगा, तो सहज ही हम सामना करके सफलता को प्राप्त कर लेंगे और फिर संगमयोगी जीवन को सफल बना लेंगे और इस समय को भी सफल बना लेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
It's enough.